أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم 1974 میں پاکستان میں جو خونی ڈرامہ کھیلا گیا اور بہت ہی ایک گھناؤنی سازش کے نتیجے میں بالآخر پاکستان کی بدنصیب اسمبلی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو جمہوریت کی تاریخ کا بدترین فیصلہ ہے اور جس نے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے پاکستانی سیاست کی جڑیں اکھیڑ دیں اور سیاست کو ہمیشہ کے لیے ملہ کا غلام بنا دیا. ویسی ہی سازشیں ان دنوں بنگلہ دیش میں چل رہی ہیں اور وہی کردار ہیں اس ڈرامے کے, وہی اس ڈرامے کی فکریں اور سوچیں کرنے والے لوگ ہیں اور اسی قسم کے ہتھیار دوبارہ استعمال کیے جا رہے ہیں. بالکل صاف وہی ہاتھ دکھائی دیتے ہیں, وہی طرز فکر ہے, وہی سازشیں اور ویسی ہی ظالمانہ کاروائیاں آج کل بنگلہ دیش میں جاری ہیں. ان کا آغاز دراصل چند سال پہلے ہوا تھا, یعنی جب جنرل ارشاد برسر اقتدار تھے. ان دنوں میں ہمیں مصدقہ اطلاعات اس بات کی ملی کہ کویت میں رابطہ عالم اسلامی کا اڈہ ہے اور وہاں مختلف اسلامی ممالک سے ان کے مذہبی وزراء کو دعوت دے کر بعض معاملات پر جو مخفی رکھے گئے غور کرنے کے لیے بلایا گیا. انہی معاملات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بنگلہ دیش میں بھی احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی کوششیں کی جائیں. اس کی اطلاعیں جب ہمیں ملی تو میں نے جماعت بنگلہ دیش کو متنبہ کیا کہ ابھی سے تیاری کریں, یہ گہری سازش ہے اور یہاں ختم ہونے والی نہیں, کیونکہ اس کے پیچھے سعودی عرب کے تیل کی دولت کار فرما ہے اور دولت کے انسانوں کی عقلوں پر پردے ڈال دیتی ہے, دولت کی حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے. بنگلہ دیش ایک غریب ملک ہے اور خطرہ ہے کہ وہاں کے صدر اس حرص میں آ کر ویسی ہی کاروائیاں شروع نہ کر دیں جیسے پاکستان میں کی گئی تھیں. کچھ معاملہ آگے بڑھا کہ وہ صدر اپنے منصب سے ہٹا دیے گئے और दूसरी हुकूमत बरसर गुजार आई। मौजूदा हुकूमत में भी वही कार्रवाइयां अक्सर नौ शुरू की गई हैं, लेकिन इस दफा मरकज सोवियत नहीं बल्कि कराइन बताते हैं कि ईवान सदर पाकिस्तान में ये साजिशें मुंतकिल हुई हैं और वहां के वजीर मजहबी अमूर इसमें पूरी तरह मुलव्वस हैं। चुनाचे वजीर आजम बांग्लादेश ने जो गुज़श्ता पाकिस्तान का दौरा किया उसके बाद मालूम होता है कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जिनके नतीजे में बाकायदा उसी तर्ज पर उसी महज पर एक मुहिम चलाई गई जिसका आगाज चंद रोज पहले जमात अहमदिया के मरकज जो चार बख्शी बाजार ढाका में है यानी हेडक्वार्टर जिनको किस्तों कहते हैं वहां उलमा के ग्रोह ने अपने चेले चांटों के साथ अचानक हमला किया और जितने अहमदी वहां उस वक्त मौजूद थे उनको बुरी तरह गदोकूब किया और बाजों की हालत काफी देर तक खतरे में मुअल्लक रही और जानकनी की हालत में रहे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से सब बड़े हौसले में रहे और खुदा ने फजल फरमाया कि कोई जान जाया नहीं गई। ऐसी जानें जाया तो नहीं जाया करती, जान देने वाले हमेशा की जिंदगी पा जाते हैं, मगर उर्दू मुहावरे के मुताबिक मैं ये कह रहा हूं कि कोई जान जाया नहीं गई और खुदा के फजल से उन सबको नेकियां कमाने के लिए एक और जिंदगी का दौर अता कर दिया गया है। इस वाशियाना हमले में तमाम इमारतों का एक मजमू है उनको आग लगा दी गई, फर्नीचर वगैरह कीमती चीजें सारी इकट्ठी की ढेरियां करके उनको आगे लगाई गई और कुरान करीम की बेहद बेहरमती की गई। ऐसी तस्वीर वहां के अखबारों में शाया हुई हैं कि हर किस्म के तराजम कुरान करीम के या बगैर तर्जमों के कुरान वो बाहर खाक में फेंके हुए आधे जले हुए या पूरे जले हुए और उनके उनवानात से साफ पता चलता है या जो तहरीरें कुछ पड़ी जाती हैं ये कुरान करीम है। तो ये वाशियाना हरकत जैसी पाकिस्तान में की गई थी वैसी ही बांग्लादेश में की गई, लेकिन एक फर्क के साथ। पाकिस्तान में जो ड्रामा खेला गया उसका आगाज रब्वा के स्टेशन पर होने वाले वाक्य से हुआ जो एक गहरी साजिश के मुताबिक इस रंग में तरतीब दिया गया कि उनको उम्मीद थी कि ऐसी बेहूदा हरकतों के नतीजे में रब्वा के नौजवान मुश्तैल होंगे और वो जरूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ और उसके नतीजे में मुल्ला को और हुकूमत को एक बहाना हाथ आ गया। फौरी तौर पर तमाम पाकिस्तान के जराए मुवासलात में रेडियो टेलीविजन अखबार के जरिए झूठी खबरें सारे मुल्क में मुश्तैद की गई जो इंतहाई इश्तियाल अंगेज थी। यहां तक कहा गया कि अहले रब्बा ने मासूम नौजवान मुसलमानों की आंखें निकाल दी, उनके जिगर चबा गए वगैरह वगैरह। अजीब गरीब किस्म की बेहूदा इश्तियाल अंगेज बातें सारे मुल्क में मशहूर हुई, बल्कि मुझे याद है कि हजारे में तो एक मौलवी बाल्टी में बकरों की आंखें लिए फेंकता था और बता रहा था कसम खा खाकर कि ये वो आंखें हैं जो मुसलमान मासूमों की आंखें हैं जो अहले रब्बा ने निकाली थी, बाल्टी भरी हुई आंखों की वहां पहुंच गई थी। इस किस्म की जाहलाना हरकतों में हुकूमत पूरी तरह मुलव्वस थी और तमाम जराए अबलाग इस झूठ की तशहीर कर रहे थे और अवामुन्नास को यकीन दिलाया जा रहा था कि रब्बा में बहुत ही बड़ा जालिमाना हमला मुसलमान तलबा पर किया गया है और बड़ी शदीद किस्म की जालिमाना कार्रवाई के नतीजे में बहुत सी जानें खतरे में हैं वगैरह वगैरह। उसका लाजमी असर जो पड़ना था वो ये था कि सारे मुल्क में फसादात की आग फैल गई और कसरत के साथ यानी हजारों की तादाद में अहमदी दुकानें जलाई गईं, मकानात जलाए गए, बहुत से अहमदी शहीद हुए। बहुत ही जालिमाना तरीक पर उस इंतकामी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया जिसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। और ऐसी तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं कि हमला हो रहा है, शहीद किया जा रहा है फैमिलियों को, उनके घरों को आग लगाई जा रही है और पुलिस साथ खड़ी है, मजिस्ट्रेट साथ खड़े हैं और उनकी निगरानी में कार्रवाई हो रही है। तो गालिबन उनका यह ख्याल था कि इस हमले के नतीजे में जगह जगह इश्तआल पैदा होगा और अहमदी जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस वाकया से पहले ही उनको मैं बार बार नसीहत कर चुका था कि आपने सब्र से काम लेना है और इनके हाथों में नहीं खेलना। चुनाचे ढाका में जो वाकया हुआ उसमें कोई जवाबी कार्रवाई मुकामी एमजीओ ने नहीं की और खालसतन व्यक्तिगत का जुल्म का निशाना बनाया गया, मगर बड़े सब्र और हौसले के साथ उन्होंने तकलीफें उठाई। ये साजिश इस तरह बेनकाब होती है कि वैसी थी जैसे पहले थी, कि यकतरफा जालमाना कार्रवाई के बावजूद जबकि मुकाबले पर कोई इश्तियाल अंगेज कार्रवाई किसी किस्म की भी नहीं हुई। अचानक सारे मुल्क में जहां जहां अहमदी जमाते हैं उनके ऊपर उलमा कर दौड़े और बरसर आम हुकूमत को धमकी दी कि अब हम इनका कत्लेआम करेंगे वरना तुम हमारा मुतालबा तस्लीम करो और इनको गैर मुस्लिम अकलियत करा दे दो। बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक फर्क है कि वहां की सियासत निस्बतन ज्यादा बाहोश है और वहां के दानिश्वर भी निस्बतन ज्यादा अकल रखते हैं। चुनाचे सिवाय एक आध मुल्ला के अखबार के तमाम अखबारात ने इस वाकया को वाकया की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बड़े बड़े सियासी लीडरों ने भी इसकी बड़ी सख्त मजम्मत की और वो जो उनका ख्याल था कि एक हवा चल पड़ेगी वो नहीं कर सकी और हुकूमत अगर इसमें मुलव्वस है, जैसा कि बज़ाहिर दिखाई देता है कि मुलव्वस है, तो हुकूमत को भी ऐसा मौका हाथ नहीं आया कि वो इश्तियाल अंगेजी की तहरीक में शामिल हो जाए। लेकिन एक हरकत हुकूमत ने ये की कि इस वाकया के मान बाद पाकिस्तान के बदतरीन उलमा जो शरपसंदी में शोहरत रखते हैं और गलीज गंदी जुबान बोलने में उनका शायद दुनिया में सानी न हो, उनको वहां बुलवाया गया और मक्का मुअज्जमा से भी उलमा को बुलाया गया। आखिर अचानक तो ये इकट्ठे नहीं हुए, एक तरफ जुल्म की कार्रवाई हो रही हो दूसरी तरफ उसकी तारीख में मजीद उलमा को बाहर सजावट देना, ये साबित करता है कि हुकूमत इसमें लाजमन मुलव्वस है, वरना दुनिया की कोई शरीफ हुकूमत अपने शहरियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के लिए बाहर से सरपसंदों को दावत नहीं दिया करती। चुनाचे उन्होंने खुलम खुला फिर इश्तियाल अंगेजी की और आम तहरीक की और जैसा कि इस ड्रामे में बिलाखिर काम इस बात पर टूटा करती है कि अहमदियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दो वरना यहां खून की नहरें बह जाएंगी। जहां तक खून की नहरों का ताल्लुक है, जमात अहमदिया बांग्लादेश खुदा के फैल से बड़ी बहादुर जमात है, कमजोर है लेकिन दिल की कमजोर नहीं और ईमान बहुत कवी है। चुनाचे मुझे बांग्लादेश के अमीर साहब की तरफ से ये यकीन दहानी बार बार मिली है कि आप फिक्रमंद हैं, फिक्र करें, दुआएं बेशक करें और खतरात भी बहुत हैं, लेकिन हर अहमदी एक चट्टान की तरह साबित कदम है और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो मजरूब जिनको शदीद तकलीफ पहुंचाई गई और बहुत बुरी तरह बेवकूफ किया गया, उनमें से एक भी नहीं है जिसने उफ की हो या शिकायत की हो कि मेरे साथ ये हो गया। इसलिए उन्होंने यकीन दिलाया है कि आप मुतमिन रहें, सारी दुनिया की जमातों को बेशक ये इतला हो कि अल्लाह तआला के फजल से बांग्लादेश में कोई अहमदी पीठ दिखाने वाला अहमदी नहीं है। अगर कोई वाकया मजीद हुआ तो हर अहमदी खुदा तआला के फजल के साथ कुर्बानियों के लिए इकट्ठा एक जान की तरह अपने आप को पेश करेगा। ये वो हालात हैं मुख्तसर जिनके जो बिल इरादा शरारत के तौर पर साजिश के नतीजे में वहां पैदा किए गए और पैदा किए जा रहे हैं। और आज की इतला ये है कि उलमा की तरफ से जैसा कि पहले भी हुआ करता था कि जुलूस पहले छोर बख्शी बाजार ढाका में जहां जमात का हेडक्वार्टर है उसके तरफ पहुंचा, वहां तो इमारत तो कोई बाकी बची नहीं थी जो जिसको मजीद जलाया जाता, लेकिन इर्द गिर्द से बहुत से मुखलिसीन वहां पहुंचे हुए थे इस अहद के साथ कि अगर अब कुछ हुआ तो हम हर किस्म की कुर्बानी पेश करेंगे। इसलिए अंदर तो वो नहीं गए, लेकिन शदीद गंद बकते हुए, गालियां देते हुए, गैर मुस्लिम करार दिए जाने के मुतालबों का ऐलान करते हुए वो आगे बढ़े और असम्बली की तरफ गए। और असम्बली में बकायदा ये मुतालबा पेश किया गया और स्पीकर ने इसको कबूल किया, बल्कि एक इतला के मुताबिक ये पहले ही पेश किया जा चुका था और डिप्टी स्पीकर की नुमाइंदगी ने इसको कबूल कर लिया था। अब ये एक अवामी कार्रवाई के तौर पर गालिबन दोबारा पेश किया गया है कि एमजीओ को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दो। जमात अहमदी अल्लाह ताला के फजल से इलाही जमात है, और आज तक जितने भी इतला जमात पर आए हैं ये खसी हकीकत है, तकलीफें पहुंची हैं, जज्बाती इज्जतों की, अमवाल की, हर किस्म की कुर्बानियां जमात ने दी हैं, अमवाल और अनफुस की हर तरह की कुर्बानियां पेश की हैं, लेकिन जमात का कदम पीछे नहीं हटा। ज्यादा से ज्यादा यह हुआ है कि चंद सूखे हुए पत्थे जड़े हैं, लेकिन उनसे ज्यादा शादाब और सरसब्ज और नशो नुमा पाने वाले पत्ते ऐसे जाहिर हुए जो बार बार भी बने, आगे उन्होंने फिर फल पैदा किए। तो जमात की तारीख बताती है कि ये वो जमात नहीं है जिसे चक्की में पीसा जाए तो छोटी होकर बाहर निकले, ये वो जमात है जो तमाम इलाही जमातों की तरह चक्की से पिस कर नहीं निकलती, बल्कि बड़ी होकर और नबी ताकतवर होकर बाहर आती है। इसलिए अल्लाह बेहतर जानता है कि वहां आइंदा क्या होगा। मैं इस सिलसिले में कुछ मशवरे वहां की हुकूमत और वहां के अवाम और सियासतदानों को देना चाहता हूं, लेकिन जो भी होगा मैं जमात अहमदिया आलमगीर को यकीन दिलाता हूं कि जमात अहमदिया को दुनिया की कोई ताकत जलील और रुस्वार छोटा नहीं कर सकते, पहले से बहुत बड़ी होकर निकलेगी। हर इब्तला ने जमात को ताकत बख्शी है, कमजोर नहीं किया। बस ये इब्तला कोई नई नौयत का इब्तला नहीं, 100 साल से हमारे आजमूदा इब्तलाओं में से एक इब्तला है। इसके नतीजे के मुतालिक जमात अहमदिया को आज मैं सभी शक नहीं। अभी पिछले दिनों जो कनाडा में मस्जिद की तकरीब थी, उससे मुतल्लिक दुनिया से जो इत्तला मिल गई हैं उनसे पता चलता है कि बहुत से गैर अहमदियों ने जो नज़ारे देखे हैं तो हैरान रह गए हैं कि जमात कहां कहां पहुंच गई है। पाकिस्तान के एक अहमदी साथी ने मुझे खत लिखा जो कल ही मिला है। वो लिखते हैं कि यहां के एक नामवर साथी हैं जो मगरबी अमूर में लिखने की शोहरत रखते हैं और उनका मारूफ नाम है सारे पाकिस्तान में। वो मुझे मिलने आए और सर फेंका हुआ और ऐसी अजीब कैफियत थी जैसे तकलीफ की हालत में हो, और उन्होंने मुझे बताया कि रात मैंने एक एमजी के घर वो ढाका में मुनक़िद होने वाली मस्जिद की सताई कार्रवाई देखी और सारी रात में इस बात पर पछताता रहा कि हम क्या कर बैठे और क्या हमारी अकलों पर गुजरी, हमने क्या कर दिया कि जमात अहमदिया को खुदा के फजल तो नहीं था, जिसके नतीजे में जमात अहमदिया को इतनी बड़ी तरक्कियात नसीब हो गई। हमारे वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी, यानी अल्फाज बयानी वो नहीं है, लेकिन जो मजमून मुझे लिखा गया उसका महासल यह है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो ख्याल है ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक अहले हदीस अखबार की तहरीर भी मैंने वहां पढ़ के सुनाई थी और उससे भी पता चलता है कि बिलाखिर वो वक्त आ पहुंचा है कि ये शदीद तरीन मुखालिफीन भी महसूस करने लगे हैं कि हमारी कोशिशें हकीकत में नाकाम रही हैं, नामुराद रही हैं, बरक्स नतीजे पैदा करने वाली हैं, और जमात अहमदिया को कमजोर करने के बजाय हम अपनी कार्रवाइयों के नतीजे में इनके लिए मजीद ताकत का सामान पैदा कर चुके हैं। दरअसल मुल्ला ने क्या ताकत बख्शी है किसी को, होता यह है कि मुल्ला की हर जमीन कार्रवाई के नतीजे में अल्लाह ताला ताकत बख्शता है, और ये बात इनको दिखाई नहीं दे रही। अगर ये बात अवाम नाक को समझ आ जाए या दानिश्वरों को ही समझ आ जाए तो आइंदा इनके लाहे अमल हैं वो इसकी रोशनी में बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन मुश्किल इनके लिए यह है कि अगर हमें छोड़ दें तब हम तरक्की करते हैं, हमारे पीछे पड़े तब हम तरक्की करते हैं। ये बेचारे जाएं तो कहां जाएं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर हजरत मसीह कहीं ये मशहूर मकूला साबित आता है कि मैं कोने का पत्थर हूं, जो मुझ पर गिरेगा वो पास पास हो जाएगा, मैं जिस पर गिरूंगा वो पास पास हो जाएगा। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात तो वो कोने के पत्थर की जमात है, जो चुनकर ऐसा पत्थर वहां नसब किया जाता है जो सबसे ज्यादा शदीद हो, यानी शिद्दा वाल कुफार के मानों में लफ्ज़ शदीद इस्तेमाल कर रहा हूं, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, और उस पर कोई चीज गिरती है तो अपना सर तोड़ती है, वो जिस पर गिरता है उसका सर तोड़ता है। तो हमें छोड़ें तो तब मारे जाएं, ना छोड़ें तो तब मारे जाएं, ये करें क्या? एक ही राह है कि ईमान लेके आए। अल्लाह ताला ने निशानात एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, एक साल दो साल नहीं, 100 साल में मुतवातर इतने ताईदात के निशान दिखाए हैं कि एक अंधे को भी महसूस हो जाना चाहिए कि खुदा ताला की ताकतें इनके साथ हैं, हमारे साथ नहीं। तो हर बार हर मुखालिफाना कार्रवाई का उलट नतीजा निकलना क्या माने रखता है? बहरहाल ये तो जिन लोगों को खुदा ताला गुमराह करार दे दे उनकी बदामालियों के नतीजे में, उनका कोई इलाज नहीं हुआ करता। ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो सच्चाई के इजहार की ताकत रखते हैं, लेकिन इनमें भारी अक्सरियत ऐसी है जिन पर इस सूरत हाल का इतलाक नहीं होता। भारी अक्सरियत ऐसी है जो लाइलमी में ये हरकतें कर रही है। ये सिर्फ चंद हैं गिनती के रहनुमा, इनको कह लें या बदनसीब लीडर कह लें, जो भी इनको नाम दें, रहनुमाई के सलाहियतों से महरूम हैं, और गलत सलाहियतों के इस्तेमाल के नतीजे में हर दफा कौम को हलाकत की तरफ लेके जाते हैं। ये वो बदनसीब वाकयात हैं जिन्होंने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। जब से पाकिस्तान कायम हुआ है मुसलसल मौलवी के मजालिम और गलत रहनुमाई के जरिए के नतीजे में कौम का हाल बद से बदतर होता चला जा रहा है। मैं बांग्लादेश के रहने वालों को नसीहत करता हूं कि अगर उनमें यह ताकत नहीं कि मजहब की तारीख का गहरी नजर से मुतालिया करें और कदीम तारीख तक निगाह दौड़ाएं, तो मजहब की तारीख हाजरा पर नजर डालें। जमात अहमदिया के 100 साल किस बात की शहादत दे रहे हैं, क्या हकीकतें उनके सामने खोल रहे हैं? ये तो कोई दूर की बात नहीं, ये तो आज की जिंदा तारीख है जो इन उमूर को खोल खोल कर उनके सामने रख रही है। तो इससे नसीहत रखने इनको हकीकत में पाकिस्तान के हालात का गहरी नजर से मुताला करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां क्या हुआ। मौजूदा वजीर आजम अगर इसमें मुलव्वस हैं, जैसा कि मैं बयान कर रहा हूं कि शराइत बताते हैं कि मुलव्वस हैं, तो उनको इतना सोचना चाहिए कि इससे पहले जिन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए थे उनसे खुदा की तकदीर ने क्या सलूक किया। और ये मुल्ला लोग जो उनको ये जाकर कहते रहे हैं कि अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हमेशा के लिए तुम्हारा नाम जिंदा रह जाएगा, तुम्हारे मुखालिफ खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे मद्दे मुकाबले सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी और तुम्हें जवाब बख्शा जाएगा, और अलावा भी ये रूहानी सेहरा भी हम तुम्हारे सर पर बांधेंगे। क्या वो ये मौजूदा वजीर आजम ये देख नहीं सकते कि यही सेहरा बांधने वाले हाथ फिर फांसी का फंदा भी पहनाया करते हैं, और इन हाथों का कोई एतबार नहीं। ये तारीख तो पुरानी नहीं है, जिन लोगों ने मौलवियों की शेरों की लालच में गलत इकदाम किए हैं उनका अंजाम आपके सामने है, और ये वो अंजाम है जो इलाही सुन्नत के मुताबिक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। लम तजद सुन्नतिल्लाह तब्दीला, लम तजद सुन्नतिल्लाह तहवीला। हर तरफ नजर दौड़ा के देख लो, तुम खुदा की सुन्नत में ना कोई तब्दीली पाओगे ना कोई हेर फेर पाओगे। ये वो सुन्नत है जो बार बार उसी तरह जारी होती है। बस आंखें खोलें, होशियार हों, अगर कोई गलतियां की जा चुकी हैं, तो अब वक्त है कि उनसे तौबा की जाए, इस्तग़फ़ार किया जाए और खामखा ज़ुल्म की राह अख्तियार करते हुए उस अंजाम को न पहुंचे जो ज़ालिमों का अंजाम खुदा तआला ने मुकद्दर कर रखा है। जहां तक कौम का ताल्लुक है, कौम भी पीसी जाएगी गलत फैसलों के नतीजे में, जो वक्त के उस वक्त के सरबरा किया करते हैं, सारी कौम पर बदअसरात मुतरतब होते हैं और ऐसे मसायब की चक्की में फिर कौम पीसी जाती है और बार बार ऐसे हौलनाक इब्तलाओं में डाली जाती है, उससे निकलने की फिर राह नहीं पाती। पाकिस्तान से मुझे इबरत हासिल करें, ये दावा किया गया था कि इस दौर में इस्लाम की एक ऐसी खिदमत की जा रही है अहमदियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार देकर, इसकी कोई मिसाल इस्लामी तारीख में आपको दिखाई नहीं देगी। इतना अभी निशान कारनामा सर अंजाम दिया जा रहा है, तो इसके नतीजे में कारनामा सर अंजाम देने वाले हमेशा के लिए खुदा की खुशनूदी हासिल कर लेंगे और अर्श मौला पर इनकी हम के गीत गाए जाएंगे और हमेशा हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे और इस्लाम तरक्की करेगा और नशो नमा पाएगा और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला होगा। ये वो नक्शे हैं उस जन्नत के जो उन्होंने खींचे और ये नक्शे अमलन किस तरह हकायक में ढल कर सामने आए उसकी तस्वीर बड़ी भयानक है। मैं सिर्फ एक दो नमूने आपके सामने रखता हूं ताकि बांग्लादेश वाले जो सुन रहे हों या उनको ये पैगाम पहुंचाया जाए तो इन बातों को महफूज रखें। जो कुछ 1974 में हुआ या जो उसके नतीजे में मंतकी नतीजे के तौर पर बाद में 84 में रूनुमा हुआ और फिर मुसलसल वो एक जुल्म व सितम की दास्तान जारी और सारी हुई, उसके नतायज क्या निकले, मिस्टर ए के बरोही साबिक वजीर कानून पाकिस्तान लिखते हैं, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। दुनिया हमारी बदामालियों को देखकर इस्लाम के बारे में राय कायम करती है। मेरा ख्याल यह है कि अगर आज हम इस्लाम से अलहदगी का ऐलान कर दें तो यूरोप का बड़ा हिस्सा हल्का बोझ इस्लाम हो सकता है। तो अगर खिदमत इस्लाम करनी है तो यह रास्ता है उसका, उस इस्लाम में दाखिल हों जिसे आपने अलग कर रखा है, उसको देखकर आजकल यूरोप हल्का बोझ इस्लाम हो रहा है। तो इस इस्लाम से तौबा करें जो जुल्म व सितम का इस्लाम है, जो हरगिज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम नहीं, क्योंकि यह नामुमकिन है कि इस्लाम हजरत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह का हो और दुनिया उसे देखकर तौबा करे और जब उस इस्लाम को छोड़ा जाए तो वो इस्लाम मरबूब हो जाए और शोहरत पा जाए और दुनिया बड़े शौक से उसकी तरफ गलगलों के साथ आगे बढ़े और उसके दामन में पनाह ढूंढने लगे। तो ये मंतकी नतायज हैं, इन पर गौर करें। बरोही साहब कोई जमात के मद्दाह में से नहीं बल्कि जमात इस्लामी के जेर असर परवरिश पाने वाले इंसान हैं, जिन्होंने खुलकर हमेशा जमात इस्लामी की तारीफ की है। उसके बावजूद इन तमाम इस्लाम को नाफिज करने की कोशिशों का जो नतीजा इन्होंने और एक मशहूर कानूनदान के तौर पर बड़ी महफूज जुबान इस्तेमाल करते हुए निकाला है, वो लिखते हैं, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आज हम इस्लाम से अलहदगी का ऐलान कर दें तो यूरोप का बड़ा हिस्सा हल्का बोझ इस्लाम हो सकता है। जब वो उन लोगों को देखते हैं जिन पर इस्लामी ममालिक का लेबल लगा हुआ है तो उनके कदम इस्लाम की तरफ बढ़ने से रुक जाते हैं। इशात इस्लाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। सैयद कैसर शिराजी साहब का जायजा ये है, जो 19 जुलाई छपने वाले एक मकाले में से लिया गया है 1991 में, मैं साले रवान के एक एक लम्हे और एक एक पल का शुमार कर रहा हूं, मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे चारों तरफ आग भड़क रही है, बारूद का धुआं फैला हुआ है, बमों के धमाके हो रहे हैं, इंसानी चीखो पुकार का शोर बरपा है, गोलियां चल रही हैं, मारधाड़ हो रही है, लूट मार का बाजार गर्म है, साये नाच रहे हैं, पुतले मचल रहे हैं, वाशत व दरिंदगी की सजा में शहरी सहमे खौफजदा और हैरान बैठे हैं। या अल्लाह ये सब क्या है, क़यामत और क्या होगी, عذاب الہی نازل ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی. سوال یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا اگر یہ اسلام کی خدمت تھی تو کیسا خدا ہے جس کے دین کی آپ نے خدمت کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تو ایسا نہیں تھا. وہ تو ادنا ادنا خدمتوں کو حیرت انگیز احسانات سے نوازتا تھا. کسی نے ایک روٹی کی قربانی پیش کی ہے تو ایسے اموال میں برکتیں دی گئیں کہ نسلان بالا نسل ان برکتوں سے ان کی اولادوں نے کھایا اور پھر بھی وہ ختم نہیں. کسی نے معمولی عزت کی قربانی دی تو عزتوں میں ایسی برکت دی گئی کہ معمولی معمولی چراہے تاج و تخت کے مالک بنا دیے گئے. یہ وہ خدا ہے جو اپنی راہ میں قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے, ان سے محبت اور پیار کے سلوک کرتا ہے. یہ کیسا خدا ہے تم لوگوں کا خدا اگر تم سچے ہو, اور یقیناً تم جھوٹے ہو سکتے نہیں, کیونکہ اگر تم سچے ہوتے تو خدا کا سلوک تم سے ایسا نہ ہوتا. بس میں تمہارے محاورے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا خدا کیسا ہے کہ جتنی خدمت کرتے ہو اتنی جتنی مارتا ہے اور ایسا ضرور رسوا کرتا ہے اور ناراضگی اور عذاب کے ایسے کوڑے برساتا ہے کہ ساری قوم اس سے بلبلا اٹھی ہے اور چیخ رہی ہے اور کوئی چارہ نہیں پا رہی, کوئی نجات کی راہ نہیں دیکھتی. یہ اسلامی مملکت ڈاکوؤں کی مملکت بن گئی, یہ اسلامی مملکت بچے چرانے والوں کی مملکت بن گئی, معصوم عورتوں کی عزتیں لوٹنے والوں کی مملکت بن گئی. ایسی مملکت بن گئی جہاں قانون کے رکھوالے سب سے زیادہ قانون کے حدود میں رہنے والوں کے امر پر ڈاکے مارتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کی حمایت کرتے ہیں جو قانون شکن ہیں. پاکستان کے حالات تو اب ایسے کھلے کھلے واضح حالات ہیں کہ کبھی دنیا میں کسی رات کی سیاہی ایسے واضح نہیں ہوئی جیسے پاکستان کے دنوں کی سیاہیاں واضح ہیں. اور اندھیر نگری کا ایسا عالم ہے کہ کوئی مول پاکستان کا باشندہ ایسا نہیں رہا جس پر شور نہ ڈال رہا ہو, پکار نہ کر رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا, کیا خدمت تم نے کی ہے خدا تعالیٰ کی اور دین کی جس کے نتیجے میں سزائیں مل رہی ہیں. وہ واضح خدمت ہے. 1974 کے بعد سے آج تک پھر اس ملک کو امن نصیب نہیں ہوا. تو بنگلہ دیش کی صدر محترمہ کی وزیر اعظم محترمہ کو اور وہاں کے دانشوروں کو میں سمجھاتا ہوں, ایک غریبانہ عاجزانہ نصیحت ہے کہ ان جہالتوں کا ارادہ نہ کریں جو ظلمات بن کر آپ کو ایسا گھیر لیں گی کہ ان ظلمات سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. چلے غریب ملک ہے, کئی قسم کے حوادث کا شکار ہے, غربت اتنی ہے کہ کم ہی کسی ملک میں اتنی غربت ہوگی, اور پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں, بچوں کو بھاری تعداد ایسی ہے جو لنگوٹوں میں یا معمولی ایک ایک چادر میں گزارے کرتی ہے. ایک وقت کی روٹی مل جائے تو غنی میں سمجھی جاتی ہے. اس کے اوپر خدا کا غضب سے ہیڑ بیٹھیں اور خدا کو ناراض کرنے کے لیے کوئی اقدام کر بیٹھیں, بہت بڑی جہالت ہوگی. اور تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی اپنے ایسی بہت حرکت کی. ملا آپ کو اسلام کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ عظیم شان خدمت ہے, کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک ایک شخص نے حضرت محمد رسول اللہ کی نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا, آپ کی خاتمیت پر ڈاکہ ڈال دیا. ایسا بہودہ محاورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. کون ہے, کس ماں نے وہ بچہ جانا ہے جو محمد رسول اللہ کی عزت پر ڈاکہ ڈال سکے, آپ کی نبوت پر ڈاکہ ڈال سکے؟ کچھ پیدا ہی نہیں ہوا ایسا تھا, اور پیدا ہو تو خدا کی تقدیر اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دے گی. بس یہ محض بہودہ محاورے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے جھوٹ کے, سوائے فساد کے. یہ زبان اور کوئی پیغام نہیں دیتی, لیکن عوام الناس جاہل بلکہ سیاستدان بھی جہالت میں مبتلا ہو کر بعض دفعہ ان جھوٹے کھوکھلے والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. ڈاکہ ڈالا, کیسے ڈاکہ ڈالا تم سے پوچھے, اور پھر اگر تمہیں کوئی غیرت ہے تو صرف رسول کی غیرت رہ گئی ہے اور خدا کی غیرت کوئی نہیں. آج دنیا میں بھاری اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جنہوں نے خدا کی خدائی پہ تمہارے محاورے کے مطابق ڈاکے ڈال رکھے ہیں. جو بت پرست ہیں آج ان کی اکثریت ہے دنیا میں, جنہوں نے خدا کے بیٹوں کو خدا بنا, خدا کے رسولوں کو خدا کا بیٹا بنا لیا. उनकी भारी अक्सरियत है और वो तुम्हारे मुहावरे के मुताबिक खुदा की खुदाई लूट बैठे, खुदा की इज्जतों पर हाथ डाल बैठे और उसके बावजूद तुम्हारे कानों पे जू तक नहीं रिंगती। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर तुम्हें कोई तवज्जो नहीं है। जिहाद करना है तो फिर उन ममालिक में जिहाद करो जहां मुसलमानों पर जुल्म सितम तोड़े जा रहे हैं और वहां मौलवियों को सबसे आगे भेजना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हमें शौक शहादत सबसे ज्यादा है। ये जो जंगबंदी लाइन थी कश्मीर की, उससे बेचारों को रोका क्यों गया? मौलवियों को चाहिए था कि खेत की खेत वहां भिजवा देते ताकि एक दफा ये शौक शहादत को पूरा करते, लेकिन सबसे पीछे रहते हैं। जहां वाकई जन मौत का खतरा सामने दिखाई दे वहां यूनिवर्सल से सांप टूट गया, और जहां कोई कमजोर निहत्ते बेबस लोगों पर जुल्म का मामला हो वहां शेरों की तरह दम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे 1973 के दौरान की बातें याद हैं। एक गुजरांवाले के गांव पर कुछ मौलवी बहुत बड़ा जुलूस लेकर हमलावर हुए थे और करीब था कि वो सारे बेचारे मासूम कमजोर अहमदी गांव पर तिल पड़ते कि किसी ने इतला दी कि वो भी आगे से तैयार बैठे हैं, आगे बढ़ना तो होश से आगे जाना क्योंकि वो हैं थोड़े लेकिन मरने के लिए तैयार बैठे हैं और कहते हैं कि हम एक के बदले में 10 मार के मरेंगे। इस खबर से सारा जुलूस मजबूत हो गया और आपस में बातें शुरू हुई कि कौन आगे बढ़े, तो किसी ने मौलवियों को पकड़ा कि आप आगे चलें क्योंकि आप ही हमें शौक शहादत दिलाकर यहां तक लाए हैं, तो मौलवियों के लिए पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। किसी ने कहा हमें बंदूक नहीं चलानी आती, किसी ने कहा हमें ये कमजोरी पैदा हो गई है, और जब उन्होंने कहा, जब मौलवियों को यह रवैया देखा तो जुलूस वालों ने कहा कि जब आपका यह हाल है तो फिर हमारी जाने को जाया करवाते हैं, हम भी वापस चलते हैं। जैसे गांव के दरवाजे से वो सारा जुलूस वापस पलट गया। तो हुकूमतों को चाहिए अगर मौलवियों की सदाकत आजमानी है तो इन्हें आजमाइशों की भट्टी में सबसे आगे झोंके, जहां जहां मजालिम हो रहे हैं मुसलमानों पर वहां इनको धकेला जाए। मैंने व्यवस्था कुछ अच्छा पहले जुमे में ऐलान किया था कि बौखनिया की सरजमीन वाकयातन शहादत की बुला रही है, और मैंने ऐलान किया था कि जिन ममालिक में मुसलमान हुकूमतें हैं वो साहब इख्तियार हैं, वहां जहाद हो सकता है। जो गैर मुस्लिम ममालिक में गैर मुस्लिम हुकूमतों में रहते हैं उनके लिए जहाद की सूरत नहीं है, लेकिन तुर्की में जहाज हो सकता है, पाकिस्तान में जहाज हो सकता है, यानी वहां की हुकूमतें ऐलान करें। तो मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह के फजल से ऐलान करें कि एमजी पेश पेश होंगे, लेकिन आपके लिए मुश्किल ये है कि आप एमजीओं को मुसलमान नहीं समझते और जहाद के लिए इस्तेमाल करना शायद पसंद न फरमाएं। तो मेरा मशवरा यह है कि मौलवियों को बाकियों को नहीं जाए थे, सारे मौलवियों को पकड़ के पाकिस्तान के हों बांग्लादेश के हों इनकी फौजें बनाएं और बाकियों में भिजवाकर इनको जाने शहादत नोश करने दें। इतना बेचारे मुसलमान अवाम के पीछे पड़े हुए हैं, जाने शहादत नोश करो, खुद क्यों नहीं नोश फरमाते? अपनी जगह वो जान तलब हो जाता है, तो धोखेबाज हैं। बांग्लादेश में भी उनका यही हाल है, बार बार वहां से इतराएं आती हैं कि बाज इलाकों पर मुजालिम हुए मुसलमानों के खिलाफ। बर्मा से बड़े भारी तादाद में महाजिर आए हैं, तो बर्मा का फ्रंट क्यों नहीं खोल लेते इनके लिए? जरूर बेचारे मजलूम एमजीओ पर हमले करवाने हैं जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते, जिनको तादाद के लिहाज से ताकत के लिहाज से ये तौफीक ही नहीं है, और उनके लिए तरदस्त जो दौर है वो मजलूमियत का दौर है, इसी में वो जिंदगी बसर करेंगे। वो अपनी मजलूमियत से भी नहीं डरते, वो अपने निहत्ता होने से भी नहीं डरते, उनको इस कमजोरी के बावजूद खौफ नहीं है कि आप आएं और उनके बड़ों और छोटों और बच्चों को कत्ल करें, उनके घरों को आग लगाएं। पहले भी आप ये उनसे करते रहे हैं और देख चुके हैं कि इसके बावजूद वो खौफ खाने वाले नहीं। तो तुम जो समझते हो कि वाकईतन तुम जाने शहादत पेश करने की ख्वाहिश रखते हो, बेहतरीन इलाज तुम्हारे लिए है कि बर्मा की सरहद खोल लो और ढाका के जो बांग्लादेश की हुकूमत को चाहिए, अच्छी भली फौज मिली हुई है, लाखों की तादाद में मुल्ला और उनके चेले चांटे हैं, इनको भिजवाएं, एक दफा झगड़ा खत्म हो, सियासत गंदगी से पाक हो और अमन की जिंदगी बसर करें, तो जाहिलाना हरकतें ना करें, हकीकत पे उतरें, देखें हाल क्या है नबूवत पर, ना कोई हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ना कोई डाका डाल सकता है, ना क़यामत तक कोई ऐसा पैदा होगा जो डाका डाल सके। हजरत अब्दुल मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो गुलामी का दावा किया है और आशिकाना गुलामी का दावा किया है। आदमी तो ये कहा कि वो है, मैं चीज क्या हूं, बस फैसला यही है। तब हमने उससे पाया शायद है तू खुदा, वो जिसने हक दिखाया वो मालिका यही है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम तो पढ़ के देखें, वो कैसा आशिक साबित है। अरबी उर्दू फारसी में जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपका कलाम है, उसकी नज़ीर सारे आलम इस्लाम में आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। तो होश करें, देखें तो सही कि किसके ऊपर आप कुफ्र के फतवे लगाते हैं। आपका दावा सिर्फ यह है कि आप वो महदी हैं जिनके आने की खुशखबरी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी और जिनके हक में आसमान से चांद सूरज ने गवाही दी। आपका दावा यह है कि आप वो बसी मौजूद हैं जिन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ईसाइयत के खिलाफ एक आलमगीर जहाद की बुनियाद डालनी थी और मुहिम शुरू करनी थी। जहां तक नबूवत का ताल्लुक है, जमात अहमदिया का यह अकीदा है कि महदी और मसीह का मकाम गुलामी नबूवत का यानी मुती नबूवत का है, जिसका कुरान करीम में जिक्र मिलता है। वो हकीकी नबूवत जो आजाद हो, जो किसी दूसरे नबी की गुलाम ना हो, वो हकीकी नबूवत जो साहिब शरीयत हो, उसका ना कभी मसीह मौऊद ने दावा फरमाया, ना कभी ऐसा इदरा किया, बल्कि ऐसे शख्स पर लानत डाली और फरमाया कि उसका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं। बस हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा तो मसीहियत और महदवियत का है, और हम अकलन और नकलन साबित करते हैं कि मसीह मौऊद जो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होना है और महदी मौऊद जिसने उम्मत मोहम्मदिया में जाहिर होना है, ये आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे नबी हैं, आजाद और हकीकी नबी इन मानों में कि जो है वो किसी दूसरे नबी की गुलामी से आजाद हों और अपनी जात में फी जात ही नबूवत के कमालात हासिल कर चुके हों। ऐसा नबी ना आ सकता है, ना कभी किसी ने दावा किया। और उम्मती नबूवत के मुतालिक कुरान करीम गवाह खड़ा है। उस आयत को जब तक तुम कुरान से नोच कर बाहर न निकाल दो, तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी पहलू से भी कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर किसी किस्म का हमला करो और ये इल्जाम लगाओ कि आपने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसी नबूवत का दावा किया है जिसको कुरान रद्द करता है। मैं युते अल्लाह व रसूल फौलाइक मालदीन नमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसन औलाइक रफीका। कैसा खुला खुला ऐलान आम है। आयत खातमुन नबीयीन बरहक है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की कसमें खाकर ऐलान करते हैं कि इस आयत पर कमाल बदर्जा कमाल हमें ईमान आता है, बल्कि इसकी मार्फत को जैसा हम समझते हैं हमारे मुखालिफ उसका अदना हिस्सा भी नहीं समझते। लेकिन उस आयत की कुरान करीम उस आयत के मजमून की कुरान करीम की कोई दूसरी आयत मुखालिफ और मुआनिद हो ही नहीं सकती। उस आयत को इस आयत की रोशनी में पढ़ें जिसमें यह ऐलान है कि हर नबूवत बंद मगर गुलामी की नबूवत, अताअत मोहम्मदिया की नबूवत, वो जारी व सारी रहेगी और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों को अता होगी। मैं ये तो अल्लाह व रसूल, ऐलान आम है कि जो शख्स भी आज अल्लाह और इस रसूल यानी मोहम्मद मुस्तफा की अताअत करेगा तो उलाए का माल रजीना नम अल्लाह वाले, अब बस यही लोग हैं जो इनाम पाने वाले होंगे, इनके सवा कोई नहीं होगा। तुम नबूवत कहते हो, कुरान कहता है कि हर इनाम मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी से वाबस्ता कर दिया गया है। मिनन नबी जीना, कौन होंगे ये इनाम पाने वाले, मिनन नबी ये नबियों में से होंगे, वह सिद्दीकीना सिद्दीकों में से होंगे, वह शहदाए शहदा में से होंगे, वह सालहीना और सालहीन में से होंगे, वह हसना उलाए का रफीका। कैसे अच्छे साथी मिल गए तुम नबियों में से हो गए, नबियों का साथ अता हो गया, सिद्दीकों शहीदों सालहीन में से हो गए, लेकिन एक शर्त है अताअत मोहम्मद मुस्तफा और कामिल अताअत। जितना अताअत में दर्जा कमाल को पहुंचोगे उतना ही बड़ा दर्जा नसीब हो जाएगा। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो ये दावा किया है कि जो कुछ मैंने पाया है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी और अताअत से पाया है, और इसे तुम वो हकीकी नबूवत करार नहीं दे सकते जिसकी राहें बंद हैं। यानी वो नबी जिस जो हमेशा के लिए उल अम्र होगा, क़यामत तक उसके लफ्ज को कोई बदल नहीं सकता, वही हाकिम है, हुक्मरान है, ना सिर्फ अपने जमाने का बल्कि हमेशा आने वाले जमानों का। इस पर तुमने ये फसाद मचा रखा है, इस पर शोर डाला हुआ है, तुम कल खुदा को क्या जवाब दोगे? लेकिन खुदा कल पर उधार नहीं रखा करता। ऐसे बदबख्तों को जो गुलाम इलाही को तोड़ मरोड़ के अपने वाशियाना मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में भी सजाएं दी जाती हैं। और वो तारीख जिसका मैंने मुख्तसर जिक्र किया है, हाल की तारीख, वो इस बात पर गवाह खड़ी है कि बाद की जमाने की बातें तो मरने के बाद देखी जाएंगी। इस दुनिया में भी खुदा फिर नहीं बख्शेगा और सजा पर सजा दिए चले जाएगा। तो बांग्लादेश के रहनुमाओं को मैं नसीहत करता हूं कि अकल से काम लें, होश के नाखून लें और अपनी कौम को इस खारे मजलत में न धकेल दें जिसमें जाते हुए तो देखा जाता है, वहां से निकलते हुए कभी किसी को नहीं देखा गया। जहां तक सियासत का मामला है, सियासत को तो यह हक ही नहीं है कि वो मजहबी उमूर के मुतालिक फैसले करे और ये कहे कि फलां के इद्दिया के खिलाफ उसका मजहब यह है। ये तो हद से ज्यादा जहलाना बात है कि किसी का किसी मजहब की तरफ मंसूब होने का हक उस मुल्क की सियासत छीन ले और ये धमकियां दी जाएं कि अगर ये हक ना छीना जाएगा तो यहां खून की नदियां बह जाएंगी। बांग्लादेश में अगर खून की नदियां बहाई जाएं और हुकूमत इसमें जिम्मेदार होगी तो जो भी खून बहेगा वो एक बंगाली का खून होगा और बंगाल के रहनुमाओं के ऊपर उस खून का एक एक कतरा कर्ज होगा। जो खून मुल्क के बशिंदों का बहता है, मुल्क के बशिंदों का हक होता है, मजहब और मिल्लत और रंग की तफरीक के बगैर हर शहरी का हक है कि उसकी हुकूमत उससे इंसाफ और अदल का मामला करे, और उसका खून का एक एक कतरा तुम्हारी गर्दन पर होगा। इस बंगाल में अगर खून बहेगा तो बंगाली का बहरा होगा, ना मुसलमान का ना हिंदू का। मजलूम का खून तो ना मजहब रखता है ना रंग रखता है, वो मजलूम ही का खून होता है। बस अल्लाह तआला तुम लोगों को अकल दे। जहां तक सियासत का ताल्लुक है, सियासत को जेब ही नहीं देता कि वो ऐसे मजहबी उमूर में दखल दे जिसके लिए सियासत बनाई नहीं गई। सियासत की दुनिया एक अलग दुनिया है, और फिर ऐसे उमूर में दखल दे जहां खुदा ने दखल देने की किसी को भी इजाजत न दी हो। ये मुल्ला दावे करते हैं कि फलां वजह से ये गैर मुस्लिम है, फलां वजह से गैर मुस्लिम है, अपनी उनकी उम्रें कट गई, 1400 साल गवाह है एक दूसरे को काफिर और गैर मुस्लिम करार देते हुए, और इतने इतने भयानक इल्जाम लगाए हैं एक दूसरे पर और इतनी शिद्दत के साथ कुफर पर फतवे लगाए हैं और इस इसरार के साथ ऐलान किया है कि फलां फिरका और उसके तमाम अफराद ना सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि जहन्नमी हैं। कि यहां तक भी लिखा है कि जो शख्स इस फतवे में शक करेगा वो भी गैर मुस्लिम और जहन्नमी है। ये सारे फतवे खुले खुले छपे हुए मौजूद हैं। बांग्लादेश की जमात को मैंने नसीहत की है कि फौरन उनको शाया करें और सारे अहले बंगाला को बताएं कि ये कौन मुल्ला है जो आज तुमसे मुखातिब हो रहा है, कल ये क्या कहा करता था। जब अहमदियत अभी वजूद में नहीं आई थी उस वक्त ये मौलवी एक दूसरे के खिलाफ क्या फतवे दिया करते थे, इनकी बातों पर चलकर तुम क्यों अपनी सियासत को तबाह करते हो? ये दरअसल एक साजिश है जैसा कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी। अहमदियों का तो खुदा मुहाफिज है और मजलूम होने के लिहाज से भी अल्लाह की हिफाजत में है, लेकिन सियासतों का तो खुदा मुहाफिज नहीं है। जब सियासतदान गलतियां करते हैं तो उसके तलख नतायज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, ये घूंट उनको भरने ही पड़ते हैं। बस आज पाकिस्तान की सियासत जो उखड़ी हुई है और दिन ब दिन बेबस और निहत्ती होती चली जा रही है, इसका एक ही इलाज है कि तौबा करो और गलत फैसलों को कालाबंद करार दो। जैसा कि मैंने बयान किया है, सियासत को तो क्या किसी मजहबी रहनुमा को भी खुदा ताला ने यह हक नहीं दिया कि किसी को गैर मुस्लिम करार दे दे। सबसे बड़ा हक अगर किसी को नसीब हो सकता था तो हजरत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह को हो सकता था। तमाम तारीख में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख में एक भी ऐसा वाक्य नहीं मैं तमाम दुनिया के मौलवियों को चैलेंज देकर कहता हूं, एक चोटी का जोर लगाओ, एक भी तुम्हें ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा कि किसी ने कहा हो मैं मुसलमान हूं और मोहम्मद रसूलल्लाह ने फरमाया हो नहीं तुम मुसलमान नहीं। उस दरक्षिंदा तारीख में जबकि इस्लाम बन रहा था, मनस्ते शहूद पर उभर रहा था, खुदा का जमाल और खुदा का जलाल एक जिंदा मोहम्मद की शक्ल में दुनिया में रूनुमा था, उस वक्त एक वाक्य भी ऐसा नहीं हुआ। वो शख्स जो खुदा से इल्म पाता था और खुदा के इल्म से कलाम करता था, जिसकी दिलों पर नजर थी, उसने भी कभी एक दफा ऐसा नहीं किया कि किसी मुसलमान होने के दावेदार को गैर मुस्लिम करार दे दिया। क्यों नहीं किया? एक तो फिरासत, तभी फिरासत ऐसी रोशन थी कि वो दुनिया के रोशन तरीन आलम के चांद सितारों को भी रोशनी में शर्माती थी, इसमें कोई शुबा नहीं। सूरज की रोशनी की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिरासत के सामने कोई हैसियत नहीं, क्योंकि इंसानी फिरासत की रोशनी मादी रोशनियों के ऊपर गालिब होती है, और ज्यों ज्यों ये फिरासत तरक्की करती है इस रोशनी को दूसरी रोशनियों पर गलबा आता होता है। इसलिए मुबालगा अमीर जी की बातें नहीं है, यह हकीकत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की फिरासत से बढ़कर रोशनी फिरासत न कभी पहले हुई न कभी आइंदा होगी, और तमाम रोशन वजूदों में सबसे ज्यादा रोशन वजूद आप थे। इसलिए रोशनी के साथ अंधेरों का कोई जोर नहीं हुआ करता। एक फैसला भी आप गलत नहीं कर सकते थे, न कभी किया। दूसरे, अल्लाह ताला ने खुद इस बारे में वाज हदायत फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है, कालत आराब आमन्ना, आराब यानी बदवी लोग कहते थे हम ईमान ले आए हैं। कोई लम तो मैनू ए मोहम्मद इनको बता दे, यानी खुदा खबर दे रहा है कि ईमान नहीं लाए। वलाकिन खून हुआ फलमना, फिर भी हम तुम्हें हक देते हैं कि अपने आप को मुसलमान कहते रहो। ऐसी हालत में अपने आप को मुसलमान कहने का भी हक है तुम्हें कि लम्मा जब खिल ईमान हो फिर कुलो तुम, ईमान ने तुम्हारे दिलों में झांका तक नहीं, दाखिल ही नहीं हुआ। लेकिन तुम कहते हो कि हम ईमान लाए हैं, खुदा कहता है ईमान नहीं लाए, वाज बात है। लेकिन तुम्हें मुसलमान कहलाने का हक फिर भी रहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हें इस्लाम की तरफ मंसूब होने के हक से महरूम नहीं करते। ये वो आयत करीमा है जिसने सारी बात खोल दी, नूरुन अला नूर का मंजर दिखाई देता है। इस आयत करीमा की नजूल से पहले भी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को उसके दावे के खिलाफ मुसलमान कहलाने के हक से महरूम नहीं फरमाया। इस आयत के बाद तो नामुमकिन हो जाता था। आज के मुल्ला अगर ये दावा करते हैं कि हमें हक हासिल है तो अपनी बदबख्ती और बदनसीबी का दावा करते हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर दावा करते हैं। और कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफा से बढ़कर रूहानी ताकतें रखने का या आलमाना ताकतें रखने का दावा करे और खुदा के यहां मरदूद न ठहरे। बस इन मरदूदों के पीछे चलकर तुम अपने नसीब को उजाड़ते और बिगाड़ते हो। खुदा हक नहीं दे रहा, यह हक ले रहे हैं और तुम्हें भी कहते हैं आओ इस तेरी के हक से तुम भी इस्तेफादा करो, तुम भी हमारे साथ शामिल होगा। इसलिए जो गलतियां पहले हुई हैं उन गलतियों को याद आना करो और तौबा करो। जहां तक मुसलमान कहलाने के हक का ताल्लुक है, हां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी इजाजत नहीं दी कि किसी को यह कहो कि तुम्हारे दिल में नहीं, क्योंकि दिल में नहीं का दावा खुदा कर सकता है। मोहम्मद मुस्तफा ने भी ईमान की नफी तब की जब खुदा ने खुद बताया कि इनके दिलों में ईमान नहीं। उसके बावजूद मुसलमान होने का दावे का हक उनको दिया और उस हक को सबने इस्तेमाल किया। जहां तक ये बात कहने का ताल्लुक है एक आम आदमी के लिए कि तुम्हारे दिल में ना ईमान है ना इस्लाम, इस सूरत हाल पर रोशनी डालने के लिए ये अजीम वाकया मैं आपके सामने रखकर इस खुतबे को खत्म करता हूं। अहमदियों के सामने तो बार बार ये वाकया पेश किया जा रहा है, मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि बंगाल तक भी आवाज पहुंच रही होगी और बंगाल के गैर अहमदी मुसलमानों और दीगर दानश्वरों के सामने ये सूरत हाल खूब खोल कर पेश करनी चाहिए कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फैसला है, उसके मुकाबले पर मौलवी तुमसे क्या मुतालबे कर रहा है। अपनी राह चुन लो, तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा के साथ रहना है या इस मुल्ला के पीछे चलना है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जहाद के दौरान एक नामी पहलवान से एक मुसलमान मुजाहिद का मुकाबला हुआ और बड़ी मुश्किल के साथ बिलाखिर उसने उस पहलवान को जेर किया, और जेर करके जब वो कत्ल करने लगा तो उसने आए ऐलान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, मैं सिर्फ मोहम्मद रसूल भी नहीं कहा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो कहते हैं नबूवत की शर्त है, नबूवत में खातमियत शामिल है, ये सब ऊट पटांग दलीलें बनाने की कोशिश करते हैं। जो मैं वाकया बयान कर रहा हूं उस वाकया में अहादीस से साबित है कि उसने सिर्फ इतना कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। इस मुसलमान मुजाहिद ने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। वापस आकर बड़े फखर के साथ आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर ये वाकया पेश किया कि या रसूलल्लाह ये वाकया हुआ है, मैं जानता था कि झूठ बोल रहा है, जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, मैंने उसे कत्ल कर दिया। उनकी अपनी रिवायत है कि हजरत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज हुए कि मैंने सारी जिंदगी में आपको कभी इतना नाराज नहीं देखा। बार बार ये कहते थे हल्ला शख्सा कलबा, हल्ला शख्सा कलबा, ओ बदनसीब तूने दिल फाड़ के क्यों नहीं देख लिया कि उसके दिल में इस्लाम था कि नहीं था। इतना कहा कि मैंने हसरत की काश अब यह कहना बंद कर दिया। एक और रिवायत में है कि मैंने ये कहा हसरत से इस बात की ख्वाहिश की, काश मैं आज से पहले मुसलमान ही ना हुआ होता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऐसी शदीद नाराजगी मुझे ना देखनी पड़ती। और फिर एक और रिवायत में है कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सुनकर यह भी फरमाया कि तू क़यामत के दिन क्या जवाब देगा जब उस शख्स का ला इलाहा इल्लल्लाह जिसे तूने कत्ल किया है क़यामत के दिन तेरे सामने गवाह बनकर खड़ा हो जाएगा कि तूने एक ऐसे बंदे को कत्ल किया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा था और तूने उसे तस्लीम नहीं किया। तो अहमदी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विरुद्ध करते हैं और विरुद्ध जान है ये कलमा उनका। इस कलमे की खातिर अहमदी जान और माल और इज्जतों की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। साल हा साल से पाकिस्तान की गलियों ने ये गवाहियां दी हैं कि इस कलमे की हिफाजत और इज्जत की खातिर अहमदी और किसी चीज की कोई परवाह नहीं करते। जेलों में ठोंसे गए, मारे गए, गलियों में घसीटे गए, इनकी इज्जतें लूटी गई, इनके अम्वाल छीने गए, इनके घरों को जलाया गया, लेकिन कलमे की हिफाजत से एक कदम भी ये पीछे नहीं हटे। इनके खिलाफ तुम दावा करते हो कि ये गैर मुस्लिम है, तुम्हें तो अकल नहीं है, तुम तो अकल से कुल्लियतन आरी हो चुके हो, लेकिन बांग्लादेश के सियासतदान पर मुझे तवक्को है कि वो बेहतर दानिश्वरी के नमूने दिखाएगा। उन्हें अकल और फहम आम दूसरे पाकिस्तानी सियासतदानों की नस्बत बहुत ज्यादा है। मेरा तजुर्बा है, मैं बंगाल में बहुत फिर चुका हूं, उन लोगों में अकल नस्बतन ज्यादा है और मंत्र की बात की जाए तो जिद नहीं करते और समझ जाते हैं। इसलिए वक्त है कि बड़ी तेजी के साथ उनको समझाया जाए और उनको बताया जाए कि अकल और होश के नाखून लो, इस खौफनाक साजिश का ना खुद शिकार हो ना कौम को शिकार होने दो, तुम्हारी ना दुनिया रहेगी ना तुम्हारा दीन रहेगा। एक ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला करने के लिए किसी में ताकत नहीं है। गली गली से वह अहमदियों की रूहें क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगी। तुम उस वक्त किस मुंह से खुदा को जवाब दोगे कि हमने इन लोगों को जुल्म किया, इन पर सितम किया, इनकी जानें ली और इनकी इज्जतें लूटी और फिर इनको गैर मुस्लिम करार दे दिया। तो अल्लाह तआला तुम्हें अकल दे और होश दे और तुम उस बदनसीब कहानी को दोहराने वाले न बनो जो पाकिस्तान में कुछ अर्सा दोहराई गई थी। उसकी पादाश आज तक उसी तरह जारी है सारी, वो वाकया तो तारीख का हिस्सा बन गया है लेकिन सजा एक जिंदा हकीकत के तौर पर कौम से चिमट बैठी है और छोड़ने का नाम नहीं लेती। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. کیونکہ سردیوں کے چھوٹے دن آ گئے ہیں اور اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے پہلے عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے, اس لیے حسب سابق جب تک یہ صورتحال کی مجبوری رہے گی ہم جمعہ کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز جمع کیا کریں گے, اور جب یہ دن اتنے لمبے ہو جائیں کہ جمعہ کا وقت اور عصر کا الگ الگ ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر حسب سابق جمعہ اور عصر کی نمازیں الگ الگ پڑھی جایا کریں گی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وذوقوا یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.